ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं साग्दूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु वैवचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादो यदि यो प्रथमो द्वितीयो तृतीयैतुर्यो कथितो यदोरु नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितु द्वादशैव वाति तमालवर्णं सुहितावतारम्। जय जय। आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद के नवें अध्याय के 43वें श्लोक का पाठ करेंगे। ये चूंकि गद्य के रूप में है तो इसका पाठ तो संभव नहीं है, इसको मैं एक बार आवृत्ति करके शब्दार्थ करके इसके तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। अतएव स्वयं तद उपकल्प अस्माकं भगवतः परम गुरुवः तव चरण सत पलाशात छायां विविध वृजिन संसार परिश्रमोपशमनीयम् उपश्रतानाम् वयम् यत कामिनोपासिदता। इसका शब्दार्थ देखेंगे सीधे। अतएव अतः स्वयं अपने आप तत् वह उपकल्पय कृपया प्रबंध करें अस्माकम् हमारा भगवतः श्री भगवान का परम गुरु सबसे बड़ा गुरु तब तुम्हारा चरण पावों का शत पलाशत 100 पंखड़ियों वाले कमल पुष्प की भांति छायाम छाया विविध अनेक वृजिन घातक स्थितियों में संसार इस बद्ध जीवन का परिश्रम कष्ट उपशमनीयम छुटकारा दिलाकर उपश्रतानाम आपके चरण कमलों में आश्रय लेने वाले भक्त आपके चरण कमलों में शरण लेने वाले भक्त वयम हम यत जिसके लिए कामेन इच्छाओं से उपसादिता आपके चरण कमलों की शरण में आने को बाध्य। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं। जिनकी छाया समस्त जिन चरणों की छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। चूंकि आप परम गुरु हैं और सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय हैं और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने के एकमात्र साधन है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए, हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं। जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है, चूंकि आप परम गुरु है और सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय है और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने के एकमात्र साधन है। तात्पर्य, मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की छाया का ही आश्रय लेना चाहिए, तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक संताप उसी प्रकार शमित हो सकेंगे जिस प्रकार विशाल वृक्ष की छाया में झुलसाने वाली धूप का ताप बिना मांगे तुरंत शमित हो जाता है। अतः बद्ध जीव का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति होनी चाहिए। ईश्वर के चरण कमलों की शरण पाकर बद्ध जीव के समस्त संसारिक संतापों का शमन हो सकता है। अतएव स्वयं तद उपकल्पया अस्माकं भगवतः परम गुरुवो तब चरण सत्पलासत छायां विविध वृजन संसार परिश्रमोपनीयम उपश्रतानां वयम् यत् कामोपनासं साधितः। सर्वप्रथम मैं यहां बैठे सभी प्रबुद्ध भक्तिवान प्रभु वैष्णवों को एवं भक्तिमती माताओं को प्रणाम करता हूं कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं सही रूप से श्रीमद् भागवतम का जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा टीका प्रस्तुत किया गया है उसको सही रूप से प्रस्तुत कर सकूं। इस षष्ठम स्कंद में जो पोषण की व्याख्या कर रहे हैं हम, पहले ही आप सभी जानते हैं कि षष्ठम स्कंद पोषण को व्यक्त कर रहा है। पोषण अर्थात जो हमने भक्ति की है या जो भक्ति में न्यूनता रह गई है उसकी पूर्ति करना। जैसे ये उपाख्यान प्रारंभ हो गया है, इसमें श्री वृत्त महाराज का जन्म हो चुका है। क्योंकि वृत्त को वृतासुर कहना कुछ ठीक नहीं है, संगत नहीं है, क्योंकि वृत्त कोई असुर नहीं है। वास्तव में उनको एक असुर देह केवल एक संयोग मात्र से प्राप्त हुआ है। इसकी कथा आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगी कि कैसे चित्रमृतु महाराज को शाप मिला और उस शाप के वशभूत होकर उनको कैसे वृत्त की देह में आना पड़ा। लेकिन जितनी भक्ति चित्रकेतु महाराज की थी चित्रकेतु शरीर में, वृत्त महाराज के शरीर में आने के बाद उनकी भक्ति में और बढ़ोतरी हो गई, भक्ति में न्यूनता नहीं आई। तो इसको कहते हैं पोषण, कि व्यक्ति की जितनी भक्ति थी अगर किन्हीं कारणों से अगर उसकी भक्ति बाधित भी हो जाती है तो उससे आगे ही भक्ति जाती है। तो हमारे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, जो हर एक जीव के परमात्मा स्वरूप हैं, हर एक जीव की भक्ति को संरक्षित करते हैं और जितनी जरूरत होती है भक्ति के लिए जो कुन अनुकूल साधन चाहिए होते हैं वो उसको पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते रहते हैं। जैसे यहां पर चित्रकेतु महाराज शापित हुए, शापित होने के बाद वृत्त महाराज की देह में उनको जो असुर देह कहा जाता है उसमें आना पड़ा, लेकिन उनकी जो भक्ति थी उससे भी वो ऊंचे गए। ऐसे ही कई उदाहरण देखने को आते हैं। जैसे ये षष्ठम स्कंद चल रहा है तो पंचम स्कंद में आप लोगों ने अवश्य ही देखा होगा कि कैसे जो भरत महाराज थे, जो भाव स्तर पर स्थित थे, केवल एक राजापने का अभिमान उनके अंदर व्याप्त रह गया था। वास्तव में जो भरत महाराज का जो तथा कथित पतन कहा जाता है, वास्तव में पतन नहीं है। भगवान क्या है, हाँ, अपने हर भक्त को पूर्णतः शुद्ध बनाकर अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, जिससे वह भगवान की अहेतु की भक्ति कर सके। तो भरत महाराज ने निष्किंचन होके अपने सारे राजपाट को मलवत त्याग करके युवावस्था में ही वनगमन कर गए थे। और जो पाटलिपुत्र के पास में उनका एक स्थान है, कुछ लोग बोलते हैं कि नेपाल में है, जो भी है, तो वहां पे जाकर उन्होंने घोर तपस्या की और इतनी तपस्या की, भगवान की इतनी आराधना की कि भाव स्तर पर स्थित हो गए। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि भाव स्तर में पहुंचने के बाद किसी भी जीव का पतन नहीं होता है, क्योंकि भाव स्तर में होता क्या है, भगवान का साक्षात्कार हो ही जाता है। ये मान लीजिए स्वप्न में होता है, साक्षात नहीं होता है। स्वप्न में भगवान जो भी कुछ आदेश देते हैं उसको स्वप्नादेश देने लगते हैं, और जब प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करता है तो जितनी भी उसकी हृदय में क्लेश रहता है, जो अनर्थ रहते हैं, उन सभी का समन हो जाता है। मतलब जब तक व्यक्ति को साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, तब तक उसके हृदय में कुछ ना कुछ मात्र में क्लेश विद्यमान रहते ही हैं। इसी प्रकार से देखिए आप, ध्रुव महाराज के चरित्र में भी देखने को मिलता है कि जब भगवान की उन्होंने 6 महीने में विकट आराधना की, और आराधना करने के उपरांत भगवान का साक्षात्कार भी किया। जब भगवान का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, तब उनके हृदय से जो भी कलमस थे, राजपाट प्राप्त करने की जो अभिलाषाएं थी, उन सबका समन हो गया, दमन हो गया। ठीक इसी प्रकार जो भरत महाराज का चरित्र है, उसमें भी एक इच्छा उनकी रह गई थी। यद्यपि उन्होंने राजपाट का त्याग तो कर दिया था, फिर भी उनमें राजापने का अभिमान था कि मैं राजा हूं, ये जितनी भी समस्त प्रजा है ये मेरी प्रजा है, जितने भी जीव जंतु हैं। वास्तव में जो राजा होता है उसकी केवल मनुष्य ही प्रजा नहीं होती, पेड़ पक्षी पशु जितने भी होते हैं, जलचर, ये सभी के सभी उसकी प्रजा होती है। तो जब उन्होंने, जब वो मृग श्रावक को, मृग छोने को, श्रावक को जब उन्होंने देखा कि कैसे वो नदी में प्रवाहित होते हुए जा रहा है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है, तो उनको एकदम स्मरण आया कि ये तो मेरी प्रजा है और मैं राजा हूं, अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन इसका ख्याल रखेगा। निश्चित ही संतों के हृदय में कृपा होती है, लेकिन कृपा कैसी होनी चाहिए, ममता रहित। अगर हम ममता बुद्धि कर लेंगे कि ये मेरा है, तो वही जीव की आसक्ति हो जाती है और वहीं से उसका बंधन पुनः प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में हमेशा यही सिखाया जाता है कि आपको ममता रहित होकर भक्ति करना है, भक्ति करना है। अगर हम अपने पुत्र पुत्री जो जन है, भक्त जन है, वैष्णव है, उनकी भी हम सेवा करते हैं, सभी से सेवा करते हैं, लेकिन आसक्ति भाव से करेंगे कि ये हमारा व्यक्ति है, ये पराया व्यक्ति है, राग द्वेष से रहित होकर हमें भक्ति करने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। तो यहां पर भरत महाराज को केवल एक कारण से कि उनमें केवल एक अभिमान शेष रह गया था, बाकी रह गया था क्या, कि मैं राजा हूं। तो इसका समन करने के लिए भगवान ने उनको पुनः एक देह और धारण करवाई। जब वो मृग देह में गए तब उनको स्मृति बनी रही कि हां भाई, कि मुझे पहले वाली गलती नहीं करनी है, मैं राजा नहीं हूं, मैं भगवान का अकिंचन दास हूं। और मृग देह में आने के बाद भी उन्होंने केवल सूखे तृण का ही आस्वादन किया, सूखे तृण से ही अपना जीवन यापन किया और कुछ नहीं भक्षण किया। और फिर अगले जन्म में अब मृग देह में भी क्या है, एक वस्तु फिर रह गई। ऐसा नहीं कि मृग देह में, अगर मृग देह से मैं भी उनको अगर पूर्ण भगवत स्मृति है तो वहां पे उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन वहां पर भी एक वस्तु रह गई, वो क्या है, ज्ञान, भगवत संबंधी ज्ञान। जो जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ज्ञान कांड और कर्म कांड को एक विशेष भांड के समान बताते हैं, वो ये भागवत पढ़ना या भागवत पठन इत्यादि ये वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान की परिभाषा में ये आता है कि व्यक्ति जानने का अभिलाषिता रहता है कि भागवत में कहा है क्या है, कितने श्लोक हैं, हो सकता है कि वो सारे के सारे श्लोक भी कंठ कर ले, सारे उसकी स्मृति में आ जाए, लेकिन उसको वो अपने जीवन में नहीं अपनाता है, केवल बोलेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना ऐश्वर्य दिखाएगा, देखिए मुझे कितने श्लोक स्मरण है, स्मृत है, लेकिन एक पंक्ति भी हो सकता है वो अपने जीवन में अपनाए ना, तो इसको बोला जाता है ज्ञान। लेकिन वही ज्ञान जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करता है तो उसको विज्ञान कहा जाता है, प्रयोगात्मक ज्ञान ही विज्ञान बन जाता है। तो हम जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं ये भक्तिमय ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है कि जिससे व्यक्ति का अहंकार पुष्ट हो, इससे व्यक्ति की तृणादपि सुनिश्चिन का भाव ही पुष्ट होगा कि वो देखेगा अरे वृत महाराज में इतनी दीनता कि युद्ध के समय भी उनको भगवत स्मरण आ रहा है, कितना महान स्तर होगा उन भक्त का। तो यहां पे हम बात कर रहे थे भरत महाराज का कि पहले जन्म में उनको केवल एक अभिमान शेष रह गया था, राजा बनेगा कि मैं राजा हूं, राजा अभिमानी थे वो। दूसरा जन्म जब जड़ भरत हिरण का हुआ तो हिरण में उनका अभिमान रह गया, जो ज्ञान की न्यूनता थी वो रह गई। फिर जो उनका तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत, तो उसमें उन्होंने कान पकड़ लिए कि ना बाबा अब कोई अभिमान नहीं रखना है, ना राजा बने का ना किसी प्रकार का, और उनके हृदय में भगवान ने स्वतः ही ज्ञान स्फुरित कर दिया, क्योंकि उनके अंदर इतनी दीनता आ गई थी कि वो अपने आप को भगवान को हमेशा समर्पित कर चुके थे और सदैव भगवत स्मरण में रहते थे सदा सर्वदा। इसलिए अगर उनके जो सारा चरित्र आप लोग पहले ही देख चुके हैं, तो बताने का आशय यह है कि जो पोषण है कि भरत महाराज की भक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में भी जा रहे हैं, लेकिन भक्ति में न्यूनता नहीं आ रही है, भक्ति में वृद्धि ही हो रही है। ठीक इसी प्रकार वृत महाराज, श्री वृत की भी चित्र केतु देह से जैसे ही वो देह स्थापित हुआ, स्थापित नहीं कहना चाहिए, एक भक्ति का एक अलग उत्थान है कि साप मिला, उमा देवी ने उनको स्थापित किया, तदनंतर उनको दूसरा देह प्राप्त हुआ वृत महाराज का, और उस देह में फिर उन्होंने जो प्रार्थनाएं की है वो वंदनीय है। जैसे श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ श्लोकी भागवत आता है द्वितीय स्कंद में, अहम ईशाग्रो, जो भी चार श्लोक आते हैं द्वितीय अध्याय के, द्वितीय स्कंद के नौवें अध्याय में, वो सारे के सारे जो भाव रखते हैं वही सारे भाव वृत महाराज की प्रार्थना में भी रखते हैं कि हम हरे तव पाद एक मूल दासानुदास भवदास में भूया, सारे भाव धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ माने गए हैं वो सारे के सारे भाव उसमें समन्वित होते हैं। अब यहां पर जो स्तुति की जा रही है देवताओं के द्वारा, अब देवताओं की स्तुति में है क्या वास्तव में, जो देवताओं की स्तुति होती है और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी स्तुति में बड़ा ही अंतर होता है। देवता ज्यादातर क्या होते हैं कि जब उनको कोई क्लेश आता है, कोई उनके भोग में जब क्लेश आता है तब उनको भगवत स्मरण होता है। ऐसे भगवत स्मरण नहीं होगा, ऐसे तो वो अपने भोग में ही अपना जीवन यापन कर देंगे, लेकिन जब असुरों के द्वारा उनके धन की, उनके ऐश्वर्य की, उनकी प्रतिष्ठा की हानि होती है, तब उनको भगवान का स्मरण आता है और तब वो भगवान की स्तुति करते हैं। वास्तव में स्तुति जैसे भक्त करते हैं वैसे ही वो करते हैं, लेकिन उनकी स्तुति जो होती है वो अहेतुक नहीं होती है, कुछ हेतु उसमें विद्वान रहता है। जैसे भगवान, जो भी भक्त भगवान की स्तुति करते हैं वो अहेतु की स्तुति करते हैं। जैसे भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्लोक आता है, सवै पंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षचे, अहेतु की अप्रतिहता चेयात्मा सुप्रसिद्धति, ययात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति की, भक्त की जो अकिंचन भक्ति है, परम भक्ति है, उत्कर्षमय भक्ति है, कि जिसमें लेश मात्र भी कोई स्व इच्छा नहीं रहती है, केवल एक ही भाव रहता है, तत्सुखी भाव। तत्सुखी भाव यानी कि हम अपनी क्रियाओं के द्वारा केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये भाव रहता है। तो यहां पे जो देवताओं की स्तुति है वो क्या है, हेतुक है, कुछ हेतु है उसमें। अपना खोया हुआ राज्य भगवान को प्रसन्न करके पाना चाहते हैं, श्री वृत महाराज का वध कराना चाहते हैं। यद्यपि आप वृत महाराज की स्तुति आगे देखेंगे, वृत महाराज एकदम उल्टी स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब मेरा मरण काल आ चुका है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मुझे इस मरणशीलता से मुझे बचाएं, ये देह तो मरणशील है तो मरणता को प्राप्त होगा ही, लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। केवल भक्तों के संग प्रार्थना करते हैं, तो ये दोनों में अंतर होता है। यहां पे जैसे जो देवताओं ने भी स्तुति की है वो भी अति सुंदर है, ऐसा नहीं कह सकते उसमें कोई न्यूनता है। यहां पे वो भी भगवान के चरण कमलों को शतपत्र पलाशात छायाम, बड़ा ही सुंदर विशेषण यहां प्रयुक्त हुआ है कि जो भगवान के चरण कमल है वो कैसे है। चरण कमल की उपमा हमेशा ही कमल से दी जाती है, इसका एक कारण है, क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं वो कवि नहीं है, कवि श्रेष्ठ है, कवि वर है, कवि हमेशा ही भगवान के चरणों की उपमा एक कमल से देता है। क्यों? क्योंकि जो भक्तों का जो मन रूपी भ्रमर है, भौरा षटपद, जो भौरा होता है वो कहां आकर्षित होता है, कमल के प्रति, क्योंकि कमल से ही उसका पोषण होता है, कमल के पराग को ही वो आस्वादन करता है, उसी से ही उसका जीवन पुष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार भक्तों का मन रूपी भौरा भगवान के चरण रूपी कमल के प्रति ही आसक्त रहता है और किसी के प्रति नहीं, क्योंकि उसमें ही उसका पोषण होता है, उसमें ही उसको आस्वादन प्राप्त होता है, उसी से ही उसकी भक्ति पुष्ट होती है, उसी से ही सर्व कल्याण होता है। इसीलिए यहां पे देवताओं ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है कि भगवान आपके जो चरण कमल है वो सतपत्र कमल की छाया के समान है। हो सकता है कोई छोटा कमल होता है तो शायद इतनी छाया व्याप्त ना होती, लेकिन कमल इतना बड़ा है, सतपत्र कमल, सतपत्र कमल कहने का ही तात्पर्य है कि आपके चरण कमल ही सर्व छाया प्रदान करने में समर्थ है। श्रील प्रभुपाद ने भी इस पर विशेष टिप्पणी की है कि जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, क्योंकि जब तक कोई जीव पूर्ण रूप से भगवत चरण आश्रित नहीं हो जाता, उसके भौतिक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के क्लेश जब तक शांत नहीं होते, उनका समन नहीं होता, जब वह प्रभु चरण को पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाता है, उसमें यत किंचित भी ननुनाचा नहीं रह जाता है कि ये भी मेरा है, इसमें भी मेरी शरणागति है, उसमें भी शरणागति है, जब तक किन्हीं अन्य में शरणागति रहती है तब तक उसकी भक्ति में कुछ ना कुछ न्यूनता बनी रहती है। जैसे ही वह भक्ति में पूर्ण रूपेण भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाता है, आश्रित हो जाता है, वैसे ही सर्व वृजन, यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है मूल में विविध वृजन, विविध मतलब पूरे भौतिक संसार में वृजन अर्थात कष्ट कषाय, पूरे संसार में जितने भी कष्ट हैं वो पूर्ण रूपेण विविध वृजन संसार परिश्रमम उपशमनीयम, उपशमन मतलब समित होना। तो भगवान के चरण कमल के आश्रय लेने पर ही क्या होगा, विविध वृजन संसार परिश्रम उपशम, जितने भी कष्ट हैं संसार के, जितने भी कष्ट हैं वो संसार परिश्रम उपशनीयम, तो इस संसार का जो कष्ट है उससे वो निवृत्त हो जाएगा। बड़ी ही सुंदर बात बोली यहां पे श्रील प्रभुपाद भी, बड़ी विलक्षण बात यहां पे बोल रहे हैं। अतः बद्ध जीव का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति होना चाहिए। जब तक अहेतु की अप्रतिहता, ये जो दुबूल शब्द है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद और श्रील श्रीधर स्वामी पाद, दोनों ही इन दो मूल शब्दों को पकड़कर अनेक अनेक व्याख्याएं की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने जो माधुर्य कादंबनी ग्रंथ की रचना की वो इन्हीं दो शब्दों को आधारित करके, इन्हीं का ही आश्रय लेके, अहेतु की अप्रतिहता, उन्होंने वो ग्रंथ की रचना की थी माधुर्य कादंबनी की। तो यहां पर जो बोली जा रही है बात कि पूर्ण रूपेण चरण का आश्रय लेना चाहिए, तो अगर इसका हम अविधेय खोजें, अविधेय यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे भाई, सबको मालूम है कि भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति होना चाहिए लेकिन फिर भी हमारी हो नहीं रही है, तो कैसे होगी, इसका अविधेय क्या है, क्या विधि है इसकी, तो वहां बताया गया पहले स्कंद में अहेतु की अप्रतिहता। जब तक व्यक्ति के हृदय में हेतु रहेगा, जैसे कोई व्यक्ति ने भक्ति प्रारंभ की कि मुझे एक बाल गोपाल की प्राप्ति हो जाए, वैवाहिक जीवन में था और वो संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए गोपाल का भजन करने लगा, हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगा, कुछ काल तक जपा, जैसे ही उसका जो ध्येय था पुत्र प्राप्ति वो प्राप्त हो गया, अब तो क्यों भक्ति करना, भक्ति में न्यूनता आ जाएगी। कोई व्यक्ति इसलिए भक्ति कर रहा है धनोपार्जन के लिए, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा उपार्जन के लिए भक्ति कर रहा है, हेतु है, जैसे ही वो हेतु की पूर्णता होगी, हेतु समाप्त हो जाएगा, हेतु की प्राप्ति हो जाएगी, वैसे ही भक्ति में न्यूनता आ जाएगी। तो जो निर्विघ्न भजन अहेतु की अप्रतिहता, प्रतिहत भक्ति क्या है कि जो विघ्न कुछ भी नहीं आना चाहिए, वास्तव में भक्ति का स्वरूप ही यह होता है कि उसमें विघ्न होता ही नहीं है। विघ्न का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई कहे कि बाल्यकाल में भक्ति नहीं हो सकती, वृद्ध काल में भक्ति नहीं हो सकती, या युवा अवस्था में भक्ति नहीं हो सकती, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि बुढ़ापे की वस्तु है, तो जो इस प्रकार की जो अप्रतिहता प्रतिहत की भक्ति जो प्रतिहत हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो वो भक्ति वास्तव में प्रतिहत जब होती है जब उसमें हेतु आ जाए कुछ। जैसे यहां पे वृत्त महाराज की जो भक्ति है, आगे जाके हम देखेंगे उनकी स्तुति में, वो किंचित मात्र में भी प्रतिहत नहीं, भले ही उनको असुर देह प्राप्त हो गया, प्रहलाद को असुर देही है, उनके पिता हिरण्यकश्यपु असुर देही है, वो भी उनको असुर कुल की प्राप्ति हुई है, बलि महाराज असुर कुल की प्राप्ति हुई है, असुर देह में तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होती है, लेकिन फिर भी भक्ति में इतनी सामर्थ है कि असुर देह प्राप्त करने पर भी व्यक्ति की भक्ति में न्यूनता नहीं आई, अपितु उनकी भक्ति में वृद्धि ही देखी गई है। तो यह बात होती है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी वृत महाराज में भक्ति में कोई न्यूनता नहीं देखी जा रही, अपितु बढ़ ही रही है। तो जब तक व्यक्ति के हृदय में कुछ हेतु विद्यमान रहेगा, उसको कुछ ना कुछ भक्ति में न्यूनता देखने को ही पड़ेगी। अब बात आ रही है कि चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए व्यक्ति को निर्हेतुक होना पड़ेगा, अहेतुक होना पड़ेगा, और उसका जो भजन है, उसका जो भक्ति अनुशीलन है, वो क्या होना चाहिए? अप्रतिहता, किसी भी हाल में बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर भोजन अधिक कर ले तो उसको लय की प्राप्ति हो जाती है, नींद आने लगती है। कुछ हमारे बिजनेस में थोड़ा बहुत भी घाटा आ जाए तो भी मन उच्छिन्न हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर हमारी निद्रा में व्यवधान उत्पन्न हो जाए कि 6 घंटे में अगर 5-10 मिनट भी कम रह जाते हैं तो उसको बराबर पूरा किया जाता है दोपहर में या फिर शाम को या अगले दिन। तो ये अप्रतिहत क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति को जो हेतु है वो उसका चरण कमल प्राप्ति नहीं है। जब व्यक्ति का हेतु भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करके उनकी सेवा का हेतु रहेगा कि मुझे तो अनंत काल तक केवल इन चरणारविंदों की ही सेवा करनी है, तब उसकी भक्ति कभी प्रतिहत नहीं होगी। लेकिन उससे पूर्व जब भी उसके जो गोल लक्ष्य छोटे मोटे रहेंगे कि मुझे कुछ धन प्राप्त करना है, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, या कोई पुत्र उत्पत्ति चाहिए, या फिर कोई सा भी कारण है कि जो डूबी हुई फैक्ट्री है वो उभर जाए, इसके लिए कोई प्रोत्साहन कर रहा है, या फिर कोई किन्हीं कारणों से भी कर रहा है, ये सारे जब तक गौण कारण रहेंगे भक्ति के, तब तक व्यक्ति में भक्ति न्यूनता रहेगी। जैसे ध्रुव महाराज भी, ध्रुव महाराज एक न्यून कारण, एक छोटे से कारण के लिए ही गए थे। अभी तो हमारी दृष्टि से बहुत महान कारण है कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा पद की प्राप्ति करनी है, इस कारण से उन्होंने वन गमन किया था। लेकिन फिर भी वन गमन करने के उपरांत श्री नारद मुनि का दर्शन करके उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो गया। तो यहां पे इस उपाख्यान में, ध्रुव उपाख्यान में, यह हमें एक क्लू मिलता है, एक युक्ति मिल जाती है कि कैसे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति होती है। जब नारद मुनि प्रभृति, व्यास देव प्रभृति या फिर अन्य आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जैसे, अन्य आचार्यों जैसे शुद्ध भक्तों का दर्शन, संग या उनके वचनामृत का व्यक्ति पान करता है तो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों के प्रति उसकी भक्ति एकदम पुष्ट हो जाती है। उससे पहले हमेशा ही भक्ति में न्यूनता रहती है। जैसे ध्रुव महाराज का उपाख्यान है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति, सोचिए हृदय में कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, हम लोगों की महत्वाकांक्षा तो जो रहती है भौतिक जीवों की इतनी सी रहती है कि कुछ धन प्राप्त हो जाए, कुछ 2-4 बिल्डिंग बंगले इत्यादि प्राप्त हो जाए, छोटी मोटी ये है। लेकिन ध्रुव महाराज की एक ब्रह्मांड नहीं, ये ब्रह्मा के अभी आधिपत्य नहीं चाह रहे हैं, वो ब्रह्मा से भी बड़ा आधिपत्य चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आधिपत्य हो कि उसमें न्यूनता कभी आई ही ना। उसको प्राप्त करने की जिसकी इच्छा हो, लेकिन भगवत भक्त श्री नारद मुनि के दर्शन से उनके हृदय में उस वासना का भी पूर्णतः शमन हो गया। नारद मुनि बोल रहे थे कि नारद मुनि ने जैसे ही उनको देखा और कहा कि ध्रुव बालक, मैं तुमको अभी तुम्हारे पिता उत्तानपाद के पास ले चलता हूं, और जो तुम्हारा इच्छा है कि तुम उनकी गोदी पे बैठना चाह रहे हो ना, मैं तुम्हें गोदी नहीं सीधा राज सिंहासन ही तुम्हारे को सुपुर्द कर देता हूं, समस्त राज सिंहासन आपको प्रदान कर दूंगा, आपको ही अभी का अभी राज्याभिषेक हो जाएगा, तुम्हारा गोदी पे क्या, तुम्हारा आसन ही हो गया। लेकिन ध्रुव महाराज के हृदय में जो वासना थी उसका समन हुआ। यद्यपि ध्रुव महाराज वहां पे ऐसा कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नारद मुनि, मेरी इच्छा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन वास्तव में जो मूल है वो यह है कि उनके हृदय में भक्ति का उदय हो गया है। जब व्यक्ति के हृदय में अहेतुक भक्ति का उदय हो जाता है तो वह ध्रुव महाराज जैसे विशाल ध्रुव पद, जो ध्रुव लोक है, उसको भी हेय समझने लगता है, उसकी दृष्टि में वो भी न्यूनता आ जाती है। तो जब व्यक्ति के हृदय में ये भाव पुष्ट हो जाता है कि मुझे श्री भगवान के चरण कमलों की ही उपासना करनी है और वही मेरे ध्येय है, वही मेरे प्रयोजन है और वही उसी को अभिधेय बनाकर, उसी को साधन बनाकर जब व्यक्ति उसकी उपासना करता है और उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है तब उसकी भक्ति अप्रतिहत हो जाती है। अप्रतिहत यानी उसमें कोई विक्षेप नहीं आता, उसमें कभी न्यूनता नहीं आती भक्ति में, भक्ति में कभी विरोध उत्पन्न नहीं होता। तो ये भक्ति का सिद्धांत है। तो युग चूंकि देवता भी वही एकदम बात बोल रहे हैं जो शुद्ध भक्त बोलता है, जैसे कुंती महारानी अपनी स्तुति में बोलती हैं कि त्वयि मे अनन्य मनसा, कि हे प्रभु मेरे मन रूप को आप इस तरीके से वहन करो कि गंगे वो उदन्विता, कि गंगा का जो ओघ है, प्रवाह है, जैसे वह अपने आप ही समुद्र की तरफ धावित होता है, ऐसे ही मेरा मन आपके चरण कमल के प्रति धावित हो। फिर इसके बाद जैसे कुंती महारानी है, कुंती महारानी शुरू में भी चरण कमलों की उपासना कर रही है ना, कि नमो पंकज नाभाया, उसमें आता है नमो पंकज मालने, नमो पंकज आंग्रे। आंग्रे शब्द से पता चलता है कि हर एक भक्त, भले ही जैसे कुंती महारानी की स्थिति ऐसी है कि उनमें दोनों स्थिति है, कभी वात्सल्य भाव भी आ जाता है कृष्ण को, क्योंकि उनके कृष्ण उनके भतीजे हैं भातृजा, और कभी उनके अंदर ऐसा भाव भी पुष्ट हो जाता है। तो माया जवनिका अच्छानम इत्यादि श्लोक के द्वारा भी वो स्तुति करते हैं, करती हैं, उनमें दोनों ही भाव पुष्ट होता है। लेकिन स्तुति करते करते जब कुंती महारानी आखिरी की कुछ स्तुतियां करती हैं चार पांच, तो उनके मन में आता है कि हे केशव, अगर मैं तुमको यहां रोकती हूं तो मैं जो द्वारकावासी हैं उनके प्रति अपराध करती हूं, कि भाई उनकी भी इच्छा है कि आपका दर्शन करें, आपकी सेवा करें। अगर मैं ये बोलती हूं कि आप यहां से गमन करिए, द्वारकावास जाइए, तो मुझे दुख होता है क्योंकि मेरा विच्छेद हो जाएगा आपसे, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा नहीं मिलेगी, दर्शन ना मिलेंगे। तो हे भगवान, आपकी जो इच्छा है आप वो करिए, आपको यहां रहना हो तो यहां रहिए और द्वारका गमन करना है तो द्वारका गमन करिए, आपको जो अनुकूल लगे, आप जिसमें सुखी हो आप वो करिए। और भगवान की स्थिति उस समय ऐसी थी कि भगवान का जितना भी सामान था सब लोड हो चुका था, सारे वो खुद एक पैर उनका जो रथ होता है उसके पेंजने पे था, फुटस्टेप, भगवान चढ़ ही चुके थे रथ पे, उसके बाद भगवान उतर जाते हैं और माता कुंती को गले लगाते हैं कि नहीं मैया, नहीं बुआ जी, मैं यहीं रहूंगा कुछ दिन और, क्योंकि भगवान वहां पे उनका जो तत्सुखी भाव था, उनका यह भाव नहीं है कि आप मुझे संतुष्ट करें, उनका यह भी भाव नहीं कि आप उनको संतुष्ट करें, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। तो यह भाव जब तक पुष्ट नहीं होता है जीव का, तब तक व्यक्ति में हेतु भक्ति बनी ही रहेगी। इसीलिए कुंती महारानी अपनी स्तुति में जो आखिरी की स्तुति है इस प्रकार से स्तुति करती है कि हर एक जो नाम है भगवान का वो भगवान के भक्तों से संबंधित करते होते, हे कृष्ण, हे कृष्ण सखा, इस तरह के कृष्ण, कृष्ण सखा वृष्णिवंशी। तो मतलब भगवान भी जब उनके भक्तों से संबंधित नाम पुकारे जाते हैं तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया जाए सीधे सीधे कि हे कृष्ण, हे गोविंद, तो हो सकता है वो इतने प्रसन्न ना हो, लेकिन जब उनको बोला जाएगा देवकी नंदन, यशोदा नंदन, राधाकांत, तो इस तरीके के जो नाम लिए जाते हैं जो उनके भक्तों से संबंधित होते हैं, तो भगवान को और भी आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है स्तव प्रिय, जो स्तुति सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग भी अगर कोई हमारी स्तुति करे कि आप कितने विद्वान हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कितना सुंदर नृत्य करते हैं, कितना सुंदर गायन करते हैं, वादन करते हैं, तो हमें भी एक आह्लाद की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि भगवान स्तुति और द्वेष, स्तुति और निंदा दोनों से ही मुक्त है, फिर भी भगवान का एक नाम सहस्त्र नाम में आता है, विष्णु सहस्त्र नाम में, स्तव प्रिय, कि जो स्तुति से प्रिय, जो स्तुति से प्रसन्न हो जाए उनका नाम है स्तव प्रिय। तो इसलिए कुंती महारानी बोल रही है त्वयि मे अनन्य विषया, कि हे प्रभु मेरा मन जो अनेक विषयों में है वो अनेक विषयों में ना रह के गंगे मोद उदम निदम, आखिरी पंक्ति है कि आपके ही चरण कमलों में, जैसे गंगा केवल केवल समुद्र की ओर धावित होती है, भले ही कितने डैम बना दिए जाएं, कितने ही अवरोध उत्पन्न किए जाएं, उससे गंगा रुकने वाली नहीं है। जो गंगा का ओघ है, प्रवाह है, वो एकदम निरंतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो भक्तों की भक्ति रहती है, चूंकि उनका एक ही ध्येय रहता है कि मुझे किसी प्रकार से चरण कमलों को एक्चुअली वास्तव में ये जो चरण कमल उपमा दी जाती है, ये केवल ऐसा नहीं है कि भगवान के चरण की ही उपासना करी है करनी है और मुखारविंद की उपासना नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। चरण कहने का तात्पर्य होता है किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को चरणों से बोला जाता है कि चरण कहां से, जैसे कोई संत आता है तो कहा जाता है चरण कहां से पधारे, चरण आइए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा शरीर नहीं आएगा, केवल चरण ही आएंगे। ये एक शैली होती है, शास्त्रीय शैली होती है, कि जब किसी अति सम्मानीय व्यक्ति को संबोधन किया जाता है तो उसको चरण पाद, जैसे श्रीपाद ये संबोधन लगाया जाता है किसी आचार्य के सामने, श्रीपाद रूप गोस्वामी। तो ये पाद संबोधन है वो अति जो एक आदर रहता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जब तक व्यक्ति का इतना प्रश्रय आदर नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति इन उद्बोधनों का प्रयोग नहीं करेगा। तो चरण कहना जो यहां पर है, श्री जो देवताओं स्तुति में कह रहे हैं, वो चरण कहना के तात्पर्य यही है कि हे प्रभु, प्रभु समस्त रूप से प्रभु, केवल चरण नहीं। वास्तव में जब व्यक्ति भक्त भगवान की सेवा करता है या अच्छे विग्रह की सेवा करता है तो ऐसा थोड़ी कि केवल चरणों का ही अभिषेक करता है, वो तो भगवान का संपूर्ण अभिषेक करता है। और लेकिन कहने में यही आता है कि चरण, तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि चरण सत पला सत छाया, कि भगवान के जो चरण कमल है उनका संपूर्ण रूप से आश्रय लेना। वो भी कैसे आश्रय लेना, किसी शुद्ध भक्त के आश्रित होकर, जैसे ध्रुव महाराज ने नारद मुनि का आश्रय लिया तब उनको अहेतुकी भक्ति प्राप्त हुई, और वो भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान का संग भी नहीं मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, भक्तों का संग। अगर आप ध्रुव महाराज की स्तुति का वर्णन आपने देखा होगा चतुर्थ स्कंद में, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आपका संग भी वांछित नहीं है, क्या है, आपके भक्तों का संग है। यानी जो भक्त शुद्ध भक्ति के स्तर पर हो जाता है वो भगवान से भगवान को नहीं मांगता है, क्या मांगता है, भक्तों का संग अवलिषित रहता है। तो ये इसी प्रकार से व्रतासुर भी अपनी प्रार्थनाओं में आकर आगे जाके कहेंगे व्रत महाराज कि हे प्रभु आप मुझे इस संसार रूपी बंधन से नष्ट करने के लिए केवल मुझे अपने भक्तों का संग प्रदान करिए, क्योंकि जो आपके भक्तों का संग है अगर आप रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप तो भाई आप हैं, मालिक का मालिक कौन है ना, भगवान से तो कोई ऐसा कह नहीं सकता कि आप इतनी देर यहां रहिए, जब भगवान प्रकट होना चाहेंगे, जब भी प्रकट होंगे, हर भक्त की अभिलाषा रहती है कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन करूं, लेकिन भगवान जब प्रकट होंगे जब ही होंगे, लेकिन आपके जो भक्त हैं वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अगर मैं उनका आश्रय ले लूंगा तो निश्चित रूप से वो आपका दर्शन करा देंगे, आपकी सेवा के माध्यम से, उनकी सेवा के माध्यम से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा व्रत महाराज भी आगे जाके कहेंगे, और ठीक इसी प्रकार ध्रुव महाराज ने भी अपनी प्रार्थना में कहा कि हे प्रभु मैं आपको केवल केवल आपके भक्तों का ही संग चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। तो वास्तव में जो भगवान के चरण कमलों के प्रति जो आसक्ति होती है, अबाधित आसक्ति, हो सकता है दो क्षण के लिए या दो घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन निरंतरता उसमें बनी रहनी चाहिए। तो वो निरंतरता कब बनी रहती है? जब व्यक्ति भगवान के भक्तों के, ऐसे भक्तों के जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनमें अहेतु की भक्ति व्याप्त है, उनकी सेवा करने से ही अहेतु की भक्ति प्राप्त होगी। तो मैं यहां पे ही अपनी वाणी को विराम करूंगा। अगर कोई आलोचना है, कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे।